तो नहीं जानते थे प्रभु के ऊपर मिथ्यावादियों के सहारे से हम उसको सजा दे दिया। इसलिए जो मिथ्यावादी साक्षी है उसकी साक्षित भी मिथ्यावादी बाधी है। केवल सोच के लिए जनराज का पैसा करना अच्छा नहीं। ये जगह को हमारे यहाँ आदेश होता है कि केवल सोच के लिए क्योंकि जज कलेक्टर जज है कुछ भी हो परंतु चेतनी तो है वेतन पाओगे रुपया पाया अपने बच्चों को पोषण किया खाया पकाया खोया फिर सवेरे बैंक के तरह से जुट गया तैयारी है। इसीलिए बल्कि ऐसे इसके हमारा तो कहना यह होता है कि चेतन की जिम्मेदारी कर लेना अच्छा और सज होना अच्छा नहीं। बड़े चकित होते हैं कि महाराज हम लोगों की तो बड़ी प्रार्थना रखती है जिसकी कहीं जज हो गए तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई वकील कहीं जज कलेक्टर हो जज हो गया तो अपने कृतकृत मान लेता है कि पहले मैं हुजूर हुजूर कह रहा था मेरे सामने हुजूर ही बने कहेंगे सर क्योंकि हुजूर 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 बोलते बोलते तब मैं भी हुजूर बन जाऊँ सर। ऐसी वासनाएं संसार में है कि वासनाओं से प्रेरित होकर के मनुष्य उचितानुचित का विचार नहीं करता। पढ़ा लिखा है 4000 तनख्वाह होगी आपकी 100 रुपये होगी किंतु उसकी जिम्मेदारी कितनी है कि प्राणांत दंड दे देना। इसलिए इन लोगों को नेत्र में सच्ची बंदी रहे ऐसा नहीं जो भी होना चाहिए जगह को समझ लें। यदि हमको मालूम पड़ जाए कि यह केस सोचा है तो सब कुछ कागज में सबूत होते हुए भी हम लेखनी से उसको बरी कर सकते हैं। जब हमें प्राणांत दंड देने का अधिकार है तो हम अपने लेखनी से बरी भी कर सकते हैं अलग भी कर सकते हैं। और हम जानते नहीं है मिथ्यावादियों के सबूत के ऊपर मातहत अदालत ने सजा कर दी प्राणांत दंड दे दिया अपील में भी वही कागज खींचा गया तो क्या रहा उसके अंदर। इस बात के कारण प्रयोजन यह है कि यदि जब भी तो कोई होगा ये कहना हमारा नहीं कि ये कचहरी टूट जाए। ये तो समय कर रहा शुरू जो प्रकालक होता है प्रकालक दो प्रकार के हैं एक मार्सी लोग प्रकालक होते हैं परमात्मा होता है। मार्सी लोग ही प्रजन हो सकते हैं अब परमात्मा स्वयं प्रकालक भी तो जज नहीं हो सकता है परंतु मानवीय वेतन वाले नहीं महर्षि लोग ऐसे ऐसे पदों पर रखे जाए तो कभी अन्याय नहीं हो सकता परंतु नौकर नहीं हो सकते वो लोग। नौकर तो होंगे नहीं किसी के क्योंकि परमात्मा के नौकर हो चुके हैं उससे ऊंचा स्वामी कौन है जिसके नौकर बनेंगे। पाठ के फल फलों को देता मंत्र यानी परमात्मा न हो तो कुछ कर नहीं सकता। फिर तो ये हाई कोर्ट के जजों के तरह से जैसा सबूत मिला वैसा कर देगा। इतना बड़ा अन्याय परमात्मा के यहाँ नहीं हो सकता है। अंतर्यामी है और व्यापक है तो व्यापकता मात्र से सत्ता मात्र है उसकी व्यापक है किंतु केवल व्यापकता का अधिष्ठानता अधिष्ठान वो बनाता है जैसे इस समय इस कुर्सी पर हम बैठे हुए हैं ये हमारा अधिष्ठान हम अधिष्ठेय ये शरीर हमारा अधिष्ठेय है अधिष्ठान है पीठ। इसलिए जहाँ पर ये अधिष्ठान का लक्षण किया है साथ में परमात्मा जो है अधिष्ठान रूप से जगत में व्यापक है अधिष्ठान का लक्षण किया है सत्रह सूर्य प्रधानतम अधिष्ठानतम अधिष्ठानता क्या है सत्ता सूचित प्रधानता ही अधिष्ठानता है। सत्ता सत्ता अस्तित्व अस्तित्व शरीर में जो हलचल होती है जितना सकती है यही स्फूर्ति है। यदि सत्ता स्फूर्ति ही देता है अधिष्ठान परमात्मा बैल के तरह से जैसे सड़क में किसम को ज्योति देते हैं बैल में गाड़ी गाड़ी में बैल को ज्योति देते हैं लोग ऐसा नहीं उत्प्रेरक कुछ में है केवल सत्ता स्फूर्ति देना ही उसकी अधिष्ठानता है प्रेरकता है। और यदि कोई कहे कि परमात्मा ही प्रेरक है तो ऐसा ऐसा प्रेरक नहीं है कि जैसे गाड़ी में सड़कों से जोत दिए जाते हैं, हमले बैल जोत दिए जाते हैं, इस प्रकार का प्रेरकत्व नहीं है। केवल सत्ता स्फूर्ति रेल ही प्रेरकता है परमात्मा की। इसी से हमारे यहाँ जगत को मिथ्या करते हैं। जगत मिथ्या है और परमात्मा नहीं, जगत अध्यक्ष है, कल्पित है। कल्पित चीज की जो है सत्ता नहीं होती। ये बात जो हम कह रहे हैं निरान के सिद्धांत अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि अनेक दर्शनों का अनेक मत है, किंतु जो इस समय हम बोल रहे हैं ये शुद्ध वेदांत का विषय है। वेदांत इस प्रकार से मानता है, वो सत्ता स्फूर्ति देना चिंतन देव का काम है और जगत का संचालन जो हो रहा है ये चिंतन देव की ही का गुण है। ये जैसे ये प्रकाश है, लोग बहुत कहा करते हैं कि परमात्मा ही सब करवाता है, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा किस प्रकार से करवाता है जिसे देखो ये प्रकाश। यहाँ पर शुभ कर्म अशुभ कर्म करने के लिए कभी किसी को कह नहीं रहा है कि तुम चोरी डाका करो या फिर विचार करो या वज्रांश का सेवन करो या जोर समाधि करो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। केवल इस प्रकाश से वस्तु का ज्ञान हो रहा है। प्रकाशकत्व जो है केवल ज्ञान है। अब ज्ञान हो गया आपको, अब आगे कर्तव्य कर्तव्य आप विचार करें। जीव स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं, फल भोगने में स्वतंत्र है। यदि जीव को कर्म करने में भी स्वतंत्र मानोगे तो किसके तंत्र में रहेगा? परमात्मा का तंत्र तो रहेगा। परमात्मा ही नीति के अधिकार में रहकर उसी की प्रेरणा से अशुभ कर्म भी करता है, तब तो परमात्मा ही अपराधी होता है। किसी से यज्ञ करवाना, किसी से चोरी करवाना, तो ये तो सब अनर्थ का मूल परमात्मा ही है। अगर जीव करता स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, तो परमात्मा सर्वथा अलग समझा जाता, अलग मानना ही पड़ता है। इस प्रकाश में किसी प्रकार की खराबी नहीं है, केवल आपको सुझाव देता है। इस प्रकाश से आपको सुबह सुबह का ज्ञान होता है, आप विचार करके पहले कर्म कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ कर्मों के संबंध में केवल शास्त्र ही प्रमाण, वेद ही प्रमाण है। पांच प्रकार के कर्म माने गए हैं। चार तो विहित है, एक अविहित है। पांच प्रकार के ही कर्म है। उन पांच प्रकार के पंच प्रकार कर्म है। उन पांच प्रकार के पंच प्रकार के कर्मों में चार तो विहित कर्म है, एक अविहित है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम निषिद्धानि कर्म पंचकम्। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम निषिद्ध, पांच प्रकार के कर्म शास्त्रों में लिखे। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, काम्य कर्म, ये तो विहित है। ये तो शास्त्र आदेश करता है नित्य कर्म करने के लिए, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित काम में। पर निषिद्ध कर्म करने के लिए शास्त्र में कहीं भी आदेश नहीं। निषिद्ध कर्म अविहित है और चार प्रकार के कर्म विहित है। नित्य कर्म क्या है? संज्ञा बंदनादि, संज्ञा है, विजाति मात्र के लिए संज्ञा है, गायत्री का जप है। गायत्री के अधिकारी नहीं माने जाते वेद शास्त्रानुसार, उनके लिए भगवत नाम स्मरण ये नित्य कर्म। उन्हें खाली नहीं रहना है, उनके लिए भी कोई भगवान का नाम जपना चाहिए। नित्य कर्म, दैनिक कर्म, नित्य ही प्रातः काल उठो, पृथ्वी को नमस्कार करो, पादस तर्पण समस्त हुए प्रातःकाल उठ करके पृथ्वी को वंदन करो, पर पृथ्वी पर चरण धरो, उसको नमस्कार करके। ये हमारे यहाँ भारत की जो है सभ्यता, दिन भर पृथ्वी पर रहना है आपको, मन मूत्र आदि करना है, सारा प्रबंध आपको पृथ्वी के ऊपर करना है। इस वास्ते पृथ्वी को नमस्कार कर ले। उसके पश्चात फिर माता पिता यदि जीवित है तो माता का चरण स्पर्श करो, पिता का चरण स्पर्श करो। मातृदेव भव, पितृदेव भव, माता पिता को वंदन करो, प्रथम
अनंतर आचार्य जो लोग हो, पर यदि गुरु है निकट तो गुरु को प्रणाम करो, नहीं है तो उनके शिष्य को नमस्कार करो, शिष्य भी नहीं है तो मानसिक प्रणाम करो। जिससे कोई गुरु अब तक नहीं है तो भगवान ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तत्मय श्री गुरुदेव नमः सर्व सबका गुरु का गुरु परमात्मा है, उसको प्रणाम करो। ये हमारे यहाँ का नित्य कर्म है, ये माता को वंदन करना, पिता को वंदन करना, क्या होगा? माता पिता पुत्र के वंदन करने से बहुत बड़े मौके खुले नहीं हो जाते। पुत्र जाकर माता का चरण स्पर्श करे तो माता जो है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी नहीं हो जाती है, वो प्रसन्न होती है, आशीर्वाद देती है, तो उसके आशीर्वाद से पुत्र जो है आगे बढ़ता है अपने कार्यों में। इस जीव को आशीर्वाद लेना चाहिए, पहले माता के आशीर्वाद लो, उसके पश्चात पिता को आशीर्वाद, फिर आचार्य का आशीर्वाद लो। इन आशीर्वादों से आप लोगों की दृष्टि होगी। पर हमको ये उदाहरण देना है कि उनके आशीर्वादों से कैसे हम माने कि हमको लाभ हो सकता है। आशीर्वाद तो ये चीज है, परंतु हमको उदाहरण क्या है कि वो हमको हमारा हमको आशीर्वाद देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उस पर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे कमत